تو آئیں آج پھر اپنی روحانی تازگی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے خداوند خدا کے کلام میں سے، جو ہم سب کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، خدا کی زندہ آواز کو سنیں۔ ہم چند لمحوں کے لیے خدا کے زور جھکیں گے تاکہ ہم اپنی تمام توجہ کو خدا کی طرف، اپنی تمام فکروں کو، اپنے بوجھوں کو، اپنے دل میں جو بھی خیالات ہیں جو ہمیں اس دنیا میں دھکیلتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں کمزور کرتے ہیں، خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں پر مسیح موجود ہے۔ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام ہم سب کے دلوں میں خداوند ایسا تجسد اور خداوند خدا تجسد اور خداوند خدا ایسی خداوند خدا روحانی یگانگتی پیدا کرے کہ ہم خداوند خدا بیدار ہوں، اور خداوند خدا سارا شوق اور ذوق خداوند تیرے لیے ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنی رہنمائی بخش، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی پہلی ہم کچھ آیات پر آج پھر غور کریں گے اور اس میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں سے دیکھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ سو پہلی آیت میں یوں لکھا ہے 10 باب کی، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے، جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو، اور سلامتی ہو، اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم جانتے ہیں اس کا جو سیاق و سباق ہے، یسوع مسیح یروشلم کو جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر وہ نبیوں کے صحیفے، وہ رسولوں اور انبیاء اکبر اور اصغر اور خداوند کے وہ تمام کلام کے وعدے کیا ہوں گے جی، پورے ہوں گے، جو یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف، یسوع مسیح کے دکھوں کی طرف اور اس کے دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے کیا ہوں گے جی، پورے ہوں گے۔ سو ہم پہلی بات جو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، اس کا وقت نزدیک آ رہا ہے، تو اس نے کتنے لوگوں کو مقرر کیا جی، 70 لوگوں کو، 70 لوگوں کی اس نے دو دو کی ٹیم بنائی اور ان کو بھیجا کہ جا کر کیا کریں، اس جگہ پر، اس شہر میں، اس علاقے میں جائیں جہاں پر یسوع خود جانے والا تھا، ان کو یہ پیغام، یہ اختیار اور یہ خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ اور خوشخبری کا پیغام ان کا کیا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خدا کی بادشاہی کیا آ گئی ہے جی، نزدیک آ گئی ہے، اس پر یقین کر لو اس پیغام کو۔ سو یسوع دو دو کی ٹیم کو بھیجتا ہے، ہم نے کل سیکھا تھا کہ دو کا عدد بائبل مقدس میں کیا ہے گی، یگانگت اور اتفاق اور اتحاد اور یونٹی کی طرف اشارہ ہے، اور دو گواہوں کی گواہی کیا ہے جی، سچی مانی جاتی تھی۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں اسی تعلق سے ان دو دو کو جو بھیجا گیا ہے، یسوع نے ان سے کیا کہا ہے دوسری آیت میں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ یسوع مسیح کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تیار تھے، یسوع مسیح کی شہرت کو لوگ سن چکے تھے، یسوع مسیح کے پیغامات کو لوگ ایک دوسرے پر کیا کر رہے تھے، عیاں کر رہے تھے، شیئر کر رہے تھے کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ ہمارے ربیوں اور فقیوں اور فریسیوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ بڑے اختیار کے ساتھ کلام کرتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو ایک عجیب قدرت ہوتی ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو لوگوں نے ایسی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں نے ارد گرد خبر پھیلانا شروع کی ہوئی تھی، جیسے کنان کے رہنے والے कनानी बेवा औरत का जो इकलौता बेटा था जब उसको मुर्दों में से जिंदा किया होगा तो क्या वो खबर दूसरे इलाकों दूसरे शहरों और समंदर और झील पार नहीं गई होगी? जरूर गई होगी, मैं आपको शर्त लगाकर कह सकता हूं। क्योंकि आज अगर किसी के घर में आग किस आज किसी के घर में अगर बेटा बेटी पैदा हो तो उसकी खबर रिश्तेदारों में फैलती है यक वक्त, और फोन और टेक्स्ट और दूसरे जरिया से खबर क्या रहती है जी, मिनट में फैल जाती है। जैसे हम आरेवाला में रहते हैं, सियालकोट में जो वाकया हुआ है उस हमारी मसीही बहन के साथ, वो खबर क्या है जी, इधर वाकया हुआ है और ठीक उसके 5 मिनट ही में खबर फैल गई कि किसी मसीही ने मसीही औरत को मजबूर किया गया कि वो मसीहत को छोड़कर इस्लाम को कबूल करे। उसने नहीं किया तो उसके जिस्म को क्या कर दिया, ये तजाब डालकर जला दिया गया। तो खबर क्या है जी, बहुत जल्दी फैलती है। सो यसु मसीह की शोहरत, यसु मसीह के मोजजात, यसु मसीह के काम इर्द गिर्द फैल चुके हैं। बहुत से लोग उस बात से मुतासर हैं, बहुत से घबराए हुए हैं, बहुत से खुश हैं, क्योंकि वो इस बात के लिए मुतमिन थे कि एक दिन खुदा का मसीह आएगा, दाऊद की नस्ल में से आएगा, जो उनका बादशाह होगा, जो उनको क्या करेगा, रूमियों की गुलामी से आजाद करेगा। ठीक जैसे दाऊद ने उन सब को, दाऊद बादशाह ने फलस्तीनियों की गुलामी से और दूसरी बहुत सी कौमों से यहूदियों को क्या किया जी, रहा किया। जैसे मूसा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शी, वैसे ही उनको वो वादे, वो नबूवतें, वो सहीफे याद थे कि यस्सु आएगा और उनके लिए क्या करेगा, राह निजात और छुटकारा बनेगा। सो यहां पर जब यस्सु ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि फसल तैयार है, फसल तैयार है, मजदूरों जाओ जाकर वो फल जो तैयार है उसे उतारो। सो ये फसल क्या है, वो तमाम लोग हैं जो तैयार हैं खुशखबरी के पैगाम को सुनने के लिए, और ये मजदूर कौन है, ये दो दो हैं। सो यसु मसीह उनको कहता है कि जाओ जाकर जो फसल तैयार है मालक से मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे, और दरअसल यसु मसीह यहां पर उनको भेज रहा है और उनको आगाह करता है चौथी आयत में, तीसरी आयत में, जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच भेजता हूं। ये बात बड़ी अनोखी है। इसराइल में जब हम यहूदियत में ये बात पढ़ते हैं तो ये नाकाबले यकीन है कि कोई भेड़ बर्रों के दरमियान जाए, क्योंकि ये लापरवाही होगी। लेकिन इसके पीछे जो सोच, जो ख्याल, जो सच क्या है, यसाया जब हम उसका 40वां बाब उसकी 11वीं आयत को देखते हैं तो यसु मसीह के बारे में नबुवत है, वो चौपान की मानद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, वो अपनी बगल में लेकर चलेगा और वो उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। यसु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना की इंजील में, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है जी, जान देता है। मजदूर जो चरवाहा नहीं, जब भेड़ियों को आता देखता है तो वो क्या करता है जी, भाग जाता है। तो जब यहां यसु मसीह उनको कह रहा है देखो मैं तुमको गोया बर्रों को क्या कर रहा हूं, भेड़ियों के बीच भेजता हूं, तो याद दिलाना चाहता हूं कि जब यसु मसीह ने इनको भेजा तो उनको बेयारो मददगार नहीं भेजा, अपना इख्तियार देकर, अपना नाम देकर, अपनी खुशखबरी देकर, अपना पैगाम देकर, वो यसु मसीह का नाम लेकर गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पुराने अहदनामा में यूसुफ जब फाराउन जो फोती फार था उसके तख्त पर बैठा था तो उसकी जो अंगूठी, जो उसकी मोहर थी, वो किसके हाथ में थी, फराउन ने किसको दी थी, यूसुफ को दी थी कि वो मिस्र मुल्के मिस्र में जहां कहीं जाए जाकर जो इख्तियार उसे दिया गया था वो खरीद सकता था, बेच सकता था, हुक्म दे सकता था। ठीक वैसे ही हम उस बेटे की तरफ जब इशारा करते हैं जो अपने बाप का सारा माल लेकर अय्याशी में बदचलनी में उड़ा देता है, अकाल आता है, भूख और तंगी और कंगाल और नंगापन, और जब सब कुछ उसका लुटपुट जाता है तो उसके जहन में आता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। और आप सबको याद होगा लूका की इंजील, जब हम 15वें बाब को पढ़ते हैं, मुसरत बेटे की कहानी। सो मुसरत बेटा वापस आता है तो बाप क्या करता है मुसरत बेटे के साथ? बाप मुसरत बेटे को क्या देता है जी? उसको पहनने के लिए क्या दिया जाता है जी? उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं, उसको पहनने के लिए जूती दी जाती है, उसको पहनने के लिए क्या किया जाता है जी? बाप अपनी वो अंगूठी उसे देता है जो क्या है, उसका इख्तियार है कि वो अपने बाप के बैंक बैलेंस में से जो चाहे उसे क्या कर सकता है, खरीद सकता है। सो फराउन ने यूसुफ को अंगूठी दी, बाप ने मुसरत बेटे को अंगूठी दी, वैसे ही यहां पर यसु मसीह इन दो दो के शिगिर्दों के टोले को जब भेज रहा है तो क्या कह रहा है, जाओ मैं तुमको क्या करता हूं, इख्तियार देता हूं, बर्रों को भेड़ियों के बीच भेजता हूं, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। और इसीलिए जबूर 23 में हम सबको ये आयत याद होगी, वो मेरे दुश्मनों के आगे क्या बिछाता है जी, दस्तरखान बिछाता है। ये यहां पर वो तस्वीर है कि यसु मसीह के नुमाइंदे उसके इख्तियार, उसकी कुदरत, उसके जोर के साथ जब जाते हैं तो शैतान जो यहां पर भेड़ियों की सूरत में जाहिर किया गया है, दाऊद नबी क्या कहता है जबूर 23 में, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मौत के साया की वादी क्या है? वो बंजर वादी है जहां पर भेड़िए हैं, जहां पर बहुत से दूसरे जंगली जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, जो भेड़ों को क्या करते हैं, फाड़ते हैं। सो यसु मसीह यहां पर उनको कहता है कि मैं तुमको उन भेड़ों को उन बर्रों के दरमियान भेजता हूं कि जाकर मेरे उस नाम को, मेरी उस कुदरत को जो मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूं, जो मैं तुम्हें दे चुका हूं, उसे जाकर क्या करो, इस्तेमाल करो। सो जैसे इन शागिर्दों को इख्तियार दिया गया है, आज वही पैगाम हम सबके लिए है कि हम उस पैगाम को लेकर जाएं। और जब उस पैगाम को लेकर जाएं तो रुकावट किसी भी चीज को बनने ना दें। कोई भी दुनियावी चीज हमारे और खुदा की ताबेदारी करने में दीवार या रुकावट या क्या ना बने जी, कोई आजमाइश ना बने, क्योंकि यसु मसीह ने उनको जब इख्तियार दिया है तो उनको आगाही दी है कि क्या नहीं करना। यसु छोटे से मुल्क में गए हैं, जैसे आज आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पाकिस्तान से आने के लिए अमेरिका में और अमेरिका से पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या इसराइल या इंडिया या पापा नुगनी या किसी इलाके में जाने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है, टिकट खरीदने की जरूरत पड़ती है, रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर खासल खास इनका सफर क्या है, वो सफर सिर्फ मुल्क के अंदर अंदर और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिसमें वो कश्ती पर जा सकते हैं, गधा गाड़ी पर जा सकते हैं, ऊंटों पर जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। यसु मसीह उनको क्या कहता है कि जब तुम इन भेड़ियों के दरमियान जाओ, भेड़िया किसको जाहिर किया गया है, शैतान को, कि मैं तुमको अपना इख्तियार देकर शैतान के सामने, जबूर 23 की वो आयत पूरी होती है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या लगाता है जी, दस्तरखान लगाता है। और उसका दस्तरखान क्या है, वो अपनी नेमतें देता है, अपनी बरकतें देता है, अपना इख्तियार देता है, अपनी कुदरत देता है कि हम इस बात में मुतमिन हों कि हमारा भेजने वाला क्या है जी, जोरावर है। तो जब उसने शागिर्दों को भेजा तो उनको खबरदार क्या किया है, जो खतरा है वो क्या है, ना बटुए ले जाना, ना झोली, ना जूत, ना झोली, ना जूतियां, ना राह में किसी को सलाम करना। ऐसा लगता है कि यसु मसीह कह रहा है कि किसी से भी कोई तल्लक ना रखना, जैसे कह रहा है कि कोई शह लेने की जरूरत नहीं। उस दौर के मुताबिक उनका जो सफर था वो बहुत ज्यादा क्या था जी, लंबा या बहुत मुद्दत का नहीं था कि जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैक करने की जरूरत है। जैसे हम जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे पास चार बड़े डब्बे होते हैं, उसमें सामान होता है, फिर हमारा अपना कंप्यूटर होता है। हमें उसके लिए 3-4-5 हफ्ते पहले तैयारी करनी पड़ती है कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, क्या जरूरत पड़ेगी, दवाई की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की या फिर तेल की, या किसी ने कोई शय मंगवाई है, या मुझे क्या चाहिए, मेरी बीवी को क्या चाहिए, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, खबरदार कर रहा है कि ना बटुए ले जाना, ना झोली, ना जूतियां, ना राह में किसी को सलाम करो। दरअसल वक्त बड़ा नाजुक था। यीशु मसीह यहूदियत में जो सलाम का सिलसिला है वो यही नहीं जैसे आज हमारे असलाम जी ते अपने राय पे। यहूदियत में जब वो एक दूसरे को सलाम के लिए मिलते थे तो वो सलाम में क्या करते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, और इसमें बड़ा वक्त लग जाता था। और जब कोई किसी के साथ सलामती की कलमे कहता था, जैसे आगे लिखा है कि जिस घर में दाखिल हो पहले उस घर की सलामती चाहो, उस पर सलाम भेजो, और अगर उस घर में सलामती का फर्जंद हो तो क्या शिगिर्द होते हुए उसके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे। तो यीशु मसीह यहां पर उनको आगाह कर रहा है कि ये काम तुमने नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उस पैगाम को लेकर जाना है। जो पैगाम क्या है जी, मैंने तुमको दिया है ताकि उस पैगाम को पहुंचाने में कोई भी रुकावट ना आए। इसकी मिसाल हमें पुराने अहदनामों में मिलती है, जब हम दूसरा सलातीन उसका 4 बाप हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं, तो वहां शनूम के इलाके की शनूमी औरत है, अलीशा नबी उस इलाके में खिदमत कर रहा होता है, और ये बड़ी मालदार औरत थी। इस वाक्य को आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका सिर्फ आपको खाका पेश करूंगा। अलीशा इलाके में खिदमत करने जाता था, और ये शनूमी औरत क्या थी जी, शनूमी औरत बहुत दौलतमंद थी, और उसके कोई औलाद नहीं थी, और उसका खावंद क्या था, बुजुर्ग था, वो उससे औलाद नहीं हो सकती थी। और वो क्या करती है, अलीशा नबी के लिए क्या करती है, रहने के लिए जगह तैयार करती है। वो अपने खामन से कहती है कि सो अपने शोहर से, 9वीं आयत में लिखा है, सो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना देंगे, और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगाएंगे, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। सो ये शनूमी औरत ने क्या किया, अलीशा नबी के लिए इंतजाम किया कि ये खिदमत करता है, जब कभी आए तो इसके लिए जगह है, रहने की, खाने की, पीने का इंतजाम होगा। सो क्या हुआ, 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि इस शनूमी औरत को बुला ला। उसने उसे बुला लिया और वो उसके साथ खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ के तू जो हमारे लिए इतनी इस कदर फिक्रें करती है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। अलीशा कहता है कि तेरे लिए क्या किया जाए, तू हमारी फिक्र करती है। लंबी कहानी मुख्तसर, लीशा उसे कहता है कि क्या तू चाहती है कि हम बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश करें। औरत जवाब में कहती है, मैं तो अपने ही लोगों में रहती है, मुझे पुलिस की, बादशाह के तहफ्फुज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दौलतमंद थी। खुदा का बंदा इस बात के बारे में सोच रहा है। और जब पढ़ते हैं 15वीं आयत में, तब उसने उसे बुलाया, और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। अलीशा ने उसके लिए दुआ की, तेरे बेटा होगा, तो क्या हुआ, वो बेटा क्या होता है, वो कहती है कि ऐ मर्दे खुदा अपनी लौंडी से झूठ ना बोल। सो वो औरत हांबला हुई, और जैसा अलीशा ने कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ, और एक दिन क्या हुआ, वो बेटा मर गया। वो बेटा मर गया, और वो शनूमी औरत क्या करती है, गदा लेती है, अपने नौकर को लेती है, और जाकर किरमल के उस पहाड़ पर जहां पर अलीशा रहता है उसके कदमों में गिर जाती है, और कहती है कि क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था, क्या मैं तेरे पास आई थी कि मुझे बेटा दे। चल मेरे साथ अभी चल। और अलीशा उस घर में जाता है और उस बेटे को जो मुर्दा हो चुका है, जो मर चुका है, क्या करता है, उसके ऊपर लेटता है, अपनी सांस और अपनी आंखें और अपना मुंह सारा उसके ऊपर रखता है। तो क्या होता है, वो लड़का जिंदा हो जाता है। और इससे पहले क्या करता है, वो अपने नौकर जहाजी को कहता है कि जब जल्दी जल्दी जा जाके उस शनूमी औरत के बेटे के घर में जा और ये आशा लेकर उसके ऊपर रख देना, मैं तेरे पीछे आता हूं। सो क्या हुआ, जब जहाजी जा रहा था तो अलीशा ने उसे हदायत की। अलीशा ने उसे क्या हदायत की थी, उसने कहा उसके इस्तकबाल को निकल। जब हदायत उसे क्या की है, 27वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो उसे कहता है तू घर जब उसकी तरफ जाए तो किसी को सलाम ना करना, किसी के पास ना रुकना, जो पैगाम मैंने तुझे दिया है उसे लेकर जा ताकि उस पैगाम को तू वहां पर पहुंचा सके। ठीक यीशु मसीह भी यहां पर यही अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मैं तुमको भेज रहा हूं, जब भेज रहा हूं तो रुपए पैसे को, जूती को, सोने को, चांदी को और दुनियावी रिश्तों को नहीं कि वो तुम्हें रोकें, बल्कि क्या करना है, जो पैगाम मैंने तुमको दिया है उसे जाकर पहुंचाओ ताकि फसल तैयार है, ताकि खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। और जब हम देखते हैं ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जहाजी को वो क्या कहता है, दूसरा सलातीन उसका 4 बाप उसकी 29वीं आयत में, तब उसने जहाजी से कहा कमर बांध, मेरा असा अपने हाथ में लेकर अपनी राह ले, और अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा असा उस लड़के के मुंह पर रख देना। हम बहुत दफा कहते हैं क्या यीशु मसीह हमें सलाम लेने देने से मना कर रहा है, नहीं, दरअसल उसका पैगाम अहम था, इसलिए उसने शागिर्दों को कहा कि पैगाम देना जरूरी है। सो आज सवाल यह है कि हम जब यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उसका कलीसिया, उसका बदन है, उसके सफीर हैं, हमको पैगाम दिया गया है, आज हमें कौन सी चीज उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में रोक रही है? क्या दुनिया के कारोबार तो नहीं? क्या हमारी अपनी ख्वाहिशें तो नहीं? क्या राह में कोई रिश्तेदार तो नहीं खड़ा कि नहीं नहीं तू गवाही का काम ना करना, तू पैगाम ना देना, किसी को जला दिया गया है, किसी को मार दिया गया है, कोई कैद खाने में डाल दिया है, क्या ये डर ये खौफ हमारे रास्ते में तो खड़ा नहीं हो रहा? क्योंकि उसने 2-2 को इसीलिए भेजा कि क्या कर सके, एक दूसरे को मजबूत कर सके। तो यीशु मसीह ने हमें अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, यानी कि अपना नाम दिया है, इसलिए हमें इस दम तोड़ती और गुनाह से भरी हुई दुनिया में पैगाम लेकर जाना है। अब सवाल यह है कि हमें कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सा ख्याल और कौन सी आजमाइश या ख्वाहिश रोक रही है कि हम दुनिया के मामलों में फंसकर उसके पैगाम को ना लेकर जाएं। आए हम खुदावंद अपने खुदा के जुर झुकें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपना रूहानी दोस्त, अपनी रूहानी सहेली बनाएं, अपना मसीही हम सफर, खिदमतगार और खिदमतगुजार बंदी ढूंढें, ताकि अगर एक कमजोर हो तो दूसरा उसे हौसला देने वाला बने कि याद है कि खुदावंद अलीशा का खुदा, मूसा का खुदा हमारे साथ है। खुदावंद सब कुछ बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।